مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو اور تمام کلیسیا میں اس کے برکت بڑے بڑے ہوئے ہاتھ کے لیے اس کا شکر ہو. اور آج کی اسی صبح میں گریس بائبل چرچ آرہوالہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم کلام خدا کو سننا شروع کریں, سیکھنا شروع کریں, جب ہم پرانے عہد نامہ میں سے روت کی کتاب کا پہلا باب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نومی, اس کا خاوند, اس کے دو بچے اور اس کی دو بہوؤں کا کردار نظر آتا ہے. نومی اس وقت بیت لحم کے علاقہ میں رہتی تھی, بیت لحم میں رہتی تھی, یہودا کے بیت لحم میں. اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ بیت لحم کا مطلب ہے کہ روٹی کا گھر. جب وہاں پر اکال پڑا تو نومی نے اور اس کے خاوند نے یہ چناؤ کیا کہ وہ مواب کے ملک میں جا کر وہاں پر بسیں. وہ جب یہاں پر دیکھتے ہیں روت کے پہلے باب میں, وہ یہاں سے اپنے ملک کو چھوڑ کر مواب میں جا کر رہنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر نومی کا خاوند مر جاتا ہے. اس کے بعد تقریباً 10 سال کے بعد اس کے دونوں بیٹے بھی مر جاتے ہیں. نومی کے نام کا مطلب ہے خوشگوار, خوشی سے بھری ہوئی, خوش مجاز عورت. جب اس پر یہ سارے حالات گزرے تو وہ اپنے ملک کی طرف لوٹی. جب اس نے سنا کہ خداون نے اپنے لوگوں کو روٹی دی ہے, خداون نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے, جو وہ اپنے ملک میں لوٹتی ہے تو اس وقت کے لوگ اسے کہتے ہیں نومی نومی نومی, جس کا مطلب ہے خوشگوار اور خوشی سے بھری ہوئی عورت. لیکن نومی اس وقت دکھ سے پر ہے, ٹوٹی ہوئی ہے حالات کی وجہ سے. جو مشکلات اس نے سامنا کی ہیں ان سارے حالات کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, اس کی خوشی غم میں بدلی ہوئی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نومی نہ کہو, مجھے مارا کہو. مارا کا جب ہم مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تلخ. نومی جو خوشگوار تھی, جب حالات اس کے بدلے, جب اس نے خدا کے اس شہر کو چھوڑا, خدا کی حضوری کو چھوڑا, خدا سے علیحدہ ہو کر بت پرست ملک میں, جو مواب کا ملک بت پرستی کے ملک میں جا بسیرا کیا, تو وہ ساری مشکلات کا سامنا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نومی نہ کہو, مجھے مارا کہو, جس کا مطلب ہے تلخ, تلخ مزاج. آج آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. اور جو کوئی سن رہا ہے, شاید آپ نے بھی اپنی زندگی میں خدا کو اپنی زندگی میں پیچھے چھوڑ کر اپنے منصوبوں کو, اپنی خواہشات کو اور ان اپنے ارادوں کو اور اپنے پلانز کو جو آپ کی نظر میں بھلے ہیں, جو آپ کی نظر میں اچھے لگتے ہیں, جیسے نئے عہد نامہ میں پطرس رسول اس بات کو کہتا ہے کہ کل کے لیے فکر نہ کرو اور نہ یہ کہو کہ ہم فلاں ملک میں جا کر روپیہ پیسہ اور یہ کچھ اور وہ کچھ بنائیں گے, لیکن نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا. نومی نے خدا کے اس شہر کو چھوڑا جو کہ روٹی کا گھر تھا. آج ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ جب حالات برے آتے ہیں تو ہم بھی تلخ مجاز ہو جاتے ہیں. ہم جو خوشی سے بھرے ہوتے ہیں, ہماری خوشی غم میں بدل جاتی ہے. ہم جو اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں, نیچے گرائے جاتے ہیں. آج مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں روحانی تڑھاؤ اور چڑھاؤ ایسا ہی ہو سکتا ہے. آپ کی روحانی زندگی میں بھی بہت کثرت سے خداوند میں مگن ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ رفاقت ٹوٹی ہوئی ہے. अगर ऐसे हालात हैं तो बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों के लिए सादा सा हुक्म है कि अपने खुदावन खुदा के हजूर खाकसार बन जाने की जरूरत है, खाकसार बन जाने की जरूरत है। और नोमी की जिंदगी में हमें नजर आता है कि उसने कहा कि खुदा मुझे, जब मैं भरी बुरी थी खुदा मुझे खाली वापस लौटा लाया, खुदा मुझे खाली वापस ले आया। हमें भी अपने आप को खाली कर देने की जरूरत है, किसी किस्म की फिक्र, सोच, तकलीफ, दुख, खानदान में से, मुल्क के लहातों में से, आपके अपने कोई भी जाती जो मसले हैं, उन सब को एक तरफ रखते हुए खुदावंद की हजूरी में खाकसार बन जाने की जरूरत है। और इसके लिए पहला यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 9वीं आयत के मुताबिक कि अगर हम अपने गुनाहों का, कमियों कमजोरियों का, खौफ का, मजूसी का खुदावन के आगे इकरार करें, सिर्फ और सिर्फ खामोशी में चंद लम्हों के लिए उसकी हजूरी में झुक जाएं, ताकि उसका कलाम जो जिंदा और पाक है, जो बेतासी नहीं लौटता, आपकी रूहानी अकलों को खोले और रूहुल कुद्दस आपकी रहनुमाई करे, खामोशी में झुक जाएंगे। कादर मुतलिक खुदा, हम जब भी खाकसारी की हालत में तेरे पास आते हैं तो खुदावन तू हमें हुक्म के तौर पर कहता है कि मेरे फजल के तख्त के पास बड़े दलेरी से आओ, ताकि तुम पर रहम और फजल करूं। खुदा बाप, इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं ताकि तेरे कलाम से भर जाएं। और खुदावंद, हमारा दिल, हमारी सोच, हमारी अकल और हमारी सारी तवज्जो तेरे कलाम की तरफ हो। आज हम जो कुछ भी सीखें सब के लिए भलाई का बायस हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाप उसकी 22वीं आयत से हम सीखेंगे। जैसा कल हमने सीखा था कि रूहुल कुद्दस कौन है, और हमने सीखा कि रूहुल कुद्दस जैसे खुदा बाप है, जैसे खुदा बेटा है, वैसे ही खुदा रूहुल कुद्दस है, उनमें कोई भी फर्क नहीं पाया जाता, वो मुसावी हैं, यानी कि वो एक जैसे ही हैं, उनमें कोई भी अता और चढ़ा नहीं पाया जाता, वो सब एक ही हैं। और ये बात इसको जाहिर करती है कि खुदा रूहुल कुद्दस है। आज हम देखेंगे कि रूहुल कुद्दस कब ईमानदारों की जिंदगी में सुकूनत करता है। मेरे साथ निकालें 22वीं आयत को, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आज हम यूनानी के चंद एक अल्फाजों में से सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही बरकत का बायस बनेंगे। यहां पर लिखा है कि तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो। इससे ये हरगिज पौलुस रसूल की मुराद नहीं कि तुम्हें उसका मकदस बनने के लिए वक्त लगेगा। इसका मतलब है कि ईमानदार उसमें तामीर किया जाता है, यानी कि उसकी बढ़ोती होती है, ताकि वो इस भेद को जाने कि वो रूह में खुदा का मस्कन है, खुदा की सुकूनतगाह है, खुदा की रहने की जगह है, जिसमें खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दस सुकूनत करते हैं, ताकि इस जमीन पर ईमानदार की जिंदगी में खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के वसीला से उनको जलाल मिले। इससे पहले कि हम इस सच्चाई पर सीखना शुरू करें कि कब हम या हर एक मर्द या बच्चा खुदा का मस्कन बनता है, हम आदम की जिंदगी में उस जिंदगी के दम को देखेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। जब हम इफिसियों 2 बाप उसकी 22वीं आयत में देखते हैं तो यहां पर जो लफ्ज रूह के लिए इस्तेमाल हुआ है, यूनानी में उसे नोमा कहा गया है। नोमा, PNEUMA, नोमा, जिसका मतलब है खुदा की सांस, खुदा की रूह, खुदा के नथनों में से निकला हुआ खुदा का हिस्सा। और जैसे हम जानते हैं पहला तिमोथियुस गालबन, पहला तिमोथियुस 3:16 के मुताबिक के हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से, इंग्लिश में उसे कहा गया है ब्रीथ, यानी के नोमा, खुदा की सांस, और ये वही सांस रूहुल कुद्दस की ईमानदारों में सुकूनत करती है। लेकिन आज हम आदम की जिंदगी में देखेंगे उस जिंदगी की सांस को। मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से पदेश की किताब उसका 2:7 को। जब हम पहले बाब का मुतालिया करते हैं तो 26-27 में खुदा ने आदम को और हवा को अपनी सूरत पर पैदा किया, यानी कि वो तीन हिस्से लेकर पैदा हुए, जिसे इंग्लिश में कहा गया है ट्राइकॉडमिस, यानी के तीन हिस्से रखना। और उर्दू में इसका तर्जमा किया जाता है जब रूह, बदन और जान, रूह, बदन और जान। यहां पर हम आदम की जिंदगी में देखेंगे, मेरे साथ निकालें पदेश 2:7। यहां पर क्या लिखा है, और खुदावन खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो इंसान जीती जान हुआ। यहां पर जो अबरानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसे कहा गया है नसोमा। ये खुदा की सांस के लिए, खुदा के दम के लिए जो आदम की जिंदगी में फूका गया, ये उसे जाहिर करता है, यानी के तीसरा हिस्सा रूहुल कुद्दस। आदम वाहद शख्सियत थी, जो पहले इंसान खुदा ने पैदा किए वो तीन हिस्से लेकर पैदा हुए, जैसा कल आपको सिखाया था। और जो कोई भी मसीह यसु से बगैर है वो दो हिस्से लेकर पैदा होता है, जिसे डाइकॉडमिक्स कहा गया है, यानी के दो हिस्से होना जिसमें जान और बदन है, रूह नहीं है। जान और बदन, जान के लिए इंग्लिश में लफ्ज सोल इस्तेमाल हुआ है लेकिन हम उसे रूह कह देते हैं, लेकिन जान और बदन उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। खुदावन खुदा ने आदम को तीन हिस्सों में पैदा किया, यानी के खुदा ने आदम को अपनी शबी पर, अपनी सूरत पर बनाया। जैसे खुदा में खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दस है, वैसे ही आदम में तीन हिस्से थे जब तक उसने गुनाह नहीं किया। लेकिन जब उसने गुनाह किया तो तीन हिस्से दो हिस्सों में तब्दील हो गए, क्योंकि खुदा ने क्या कहा था। मेरे साथ देखें पदेश 2:16-17 में खुदावन ने उनको क्या हुक्म दिया था, लिखा है, और खुदावन खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेको व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। यहां पर खुदा जिस्मानी मौत के बारे में नहीं बल्कि रूहानी मौत के बारे में बात कर रहा है, जैसे नए अहदनामा में हमें रूमियों 3:23 में जिक्र मिलता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। यहां पर आदम तीन हिस्सों में से जुदा होकर दो हिस्सों में शामिल हुआ जब उसने गुनाह किया, और यहां पर खुदा उसे आगाह करता है कि अगर तूने उसमें से खाया, अगर तूने मेरी नाफरमानी की तो तू मरा, यानी के तू रूहानी तौर पर, जो रूह मेरा रूह तुझ में है, जिसके बायस तू मेरे साथ रफाकत रखता है, मेरे साथ तेरी बातचीत होती है, मुझे समझ सकता है, वो हिस्सा तुझसे जुदा हो जाएगा। और उसने क्या किया, चुनाव किया और अपनी बीवी की बात मानी और उसका रूह वाला हिस्सा उससे जुदा हो गया और वो दो हिस्सों में शामिल हो गया। आज हम देखेंगे कि कब हम या हर एक बच्चा, औरत, मर्द खुदा का मस्कन बनता है, यानी कि तीन हिस्से हासिल करता है, क्योंकि बनीनु इंसान आदम के गुनाह के बायस दो हिस्से लेकर पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में आदम का गुनाह है, जिसके बायस रोमियो 3:3 उसकी 23 में लिखा है, सबने गुनाह किया। इसका मकसद मतलब ये नहीं कि हमने कोई गुनाह या गलती की, इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में वो गुनाह, वो जरासीम जो मौत का यानी कि खुदा से जुदाई का गुनाह आदम के वसीला से बनी नू इंसान में दाखिल हुआ, इसलिए वहां पर लिखा है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से यानी उसकी हजूरी से, उससे बातचीत करने से, उसकी मानद जो उसने अपनी छवि पर बनाया उससे महरूम है। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बड़े वाजह तौर पर कहती है, खुदा ने उस वक्त कौन सी मौत के बारे में कहा? रूहानी मौत के बारे में, जुदाई के बारे में, कि तुम्हारी मुझसे जुदाई हो जाएगी, तुम तीन हिस्सों में ना जिंदगी गुजारोगे बल्कि तुम दो हिस्सों में बदल जाओगे, जिसमें सिर्फ जान और बदन होगा। और हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को अपनी शबी पर बनाया, यानी कि तीन हिस्से, और आदम के गुनाह करने के बायस आदम से जो औलाद पैदा हुई वो आदम की शक्ल पर पैदा हुई। मेरे साथ हवाला देखें, मेरे साथ निकाले पदेश 5:5 उसकी 1 आयत से, इसको आप तक फिर पहुंचाऊंगा इस बात को। खुदा ने जब आदम को पैदा किया तो उसे अपनी सूरत, अपनी शबी पर, अपनी मानद बनाया और उसे तीन हिस्से दिए, रूह, बदन, जान। लेकिन उसके गुनाह के बायस रूह वाला हिस्सा मर गया, यानी कि उससे जुदा हो गया। तो जैसे खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया था तीन हिस्सों में, जब आदम दो हिस्सों में बदला तो उसमें से होने वाली औलाद और नस्ल वो भी दो हिस्से लेकर पैदा हुए। और इसके बारे में बाइबल बड़े वाजह तौर पर तालीम देती है। मेरे साथ निकालें पदेश 5:5 उसकी 1 आयत को देखें, ये आदम का निसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबी पर बनाया। गौर करने की बात है, इन बातों को गौर से सुनने और इन पर गौर करें। नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। 3 आयत, और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत व शबी का एक बेटा उसके यहां पैदा हुआ। किसकी सूरत पर? आदम की सूरत, यानी के दो हिस्से लेकर पैदा हुआ, जिसमें सिर्फ जान और बदन था, रूह नहीं थी। ये रूह खुदा रूहुल कुद्दस की नुमाइंदगी कर रही है, खुदा की वो सांस है, खुदा का वो दम है जो आदम को बख्शा गया। लेकिन जो आदम से उसका बेटा सीत पैदा हुआ, उसे कौन सा शक्ल मिली, कौन सा हिस्सा मिला? सिर्फ दो हिस्से मिले, क्योंकि वो आदम की सूरत पर पैदा हुआ, क्योंकि आदम दो हिस्सों में तब्दील हो चुका था गुनाह के बायस। और क्या लिखा है? और आदम 130 बरस का था। यहां पर आपको जो पहली बात बताई है, रूहानी मौत की बात हो रही है, जिस्मानी मौत की नहीं, क्योंकि आदम गुनाह के बायस 130 बरस का था जब उसकी सूरत व शबी का एक बेटा उसके पैदा हुआ और उसने उसका नाम सीत रखा। जब हम अब्रानी में सीत के नाम का मतलब देखते हैं तो उसके नाम का मतलब क्या है? आज मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था तो उसके नाम का मतलब निकाला, किसी की जगह किसी और को लाना। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बड़े वाजह तौर पर कहती है। मेरे साथ थोड़े से पीछे जाएं, پیدائش چار باب اس کی 25 آیت کو دیکھیں، یہاں پر صاف ہو جائے گا آپ پر یہ حوالہ. اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی، ہوا کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو کاہن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا، اور یہ ہے سیت کے معنی کسی کی جگہ کسی اور کو لانا. اور یہاں پر یہ بھیت، یہ گہری سچائی ہم پر سامنے آتی ہے کہ آدم خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا تین حصوں میں، جسے ٹرائی کارڈ مکس کہا گیا ہے، اور اس سے ہونے والی نسل، ساری نسل انسانیت دو حصوں میں پیدا ہوئی جسے ڈائی کارڈ مکس کہا جاتا ہے. اور یہاں پر سیت کے نام کا بھی مطلب دیکھتے ہیں کہ جسے کاہن نے قتل کیا حابل کی طرح، جیسے وہ دو حصے لے کر پیدا ہوا، وہ بھی اسی کی ماند آدم کی صورت پر پیدا ہوا. یہ تھا وہ گہرا بھیت جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کب ہر ایک ایماندار عورت، بچہ، بوڑھا، نوجوان خدا کا مسکن بنتا ہے، یعنی کہ دو حصوں میں سے تین حصوں میں وہ کب تبدیل ہوتا ہے. اور یہ بائبل مقدس میں بڑے واضح طور پر تعلیم دی گئی ہے کہ کب ہر ایک ایماندار عورت، بچہ خدا کی صورت پر پیدا ہوتا ہے یا تبدیل ہوتا ہے، جسے یعنی کہتے ہیں تین حصوں میں بدلتا ہے، یعنی کہ پرانی انسانیت کب نئی انسانیت بنتی ہے، یعنی کہ دو حصے کب تین حصوں میں بدلتے ہیں. اور اس کی ہمیں واضح تصویر یسوع مسیح میں نظر آتی ہے. جب یسوع مسیح انسان بنا تو یسوع مسیح آدم کے بعد واحد وہ شخصیت ہے جو تین حصوں میں پیدا ہوئی، کیونکہ یسوع مسیح میں گناہ نہیں پایا گیا، کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور مقصہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. اور یہاں پر ہم یسوع مسیح کی زندگی میں اس حقیقت کو دیکھتے ہیں. اور بائبل مقدس ایمانداروں کو کہتی ہے کہ یسوع مسیح کی ماند بنو، یعنی کہ تین حصے کس طرح لا سکتے ہیں اپنی ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، وہاں پر ہمیں نکودیمس کی زندگی میں اس کی کہانی میں پتا چلتا ہے یسوع مسیح نے کیا کہا. جواب میں اس سے کہا، جب 5 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے ہے وہ جسم ہے، اور جو روح ہے اور جو روح سے ہے وہ روح ہے، یعنی کہ نئی پیدائش، ہماری پرانی انسانیت نئی انسانیت میں تب بدلتی ہے جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. یہ وہ خدا کی نعمت ہے جس کے لیے یوحنا 3:16 میں کہا گیا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، یعنی کہ وہ دوبارہ اس روحانی موت کا سامنا نہیں کرے گا، دوبارہ اس کی زندگی میں وہ جدائی نہیں آئے گی اگر یسوع مسیح پر ایمان رکھے. اور اسی طرح یوحنا کی انجیل اس کے 1 باب میں اس کی 12 آیت میں یہ کس طرح ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی کہ خواہ وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، کیسی بھی حالت میں ہے، اگر وہ اپنی زبان سے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا، اپنا نجات دہندہ ہونے کا اقرار کرتا ہے تو وہ تین حصوں میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی کہ خدا کے فرزند بننے کا اسے حق ملتا ہے، اسے قدرت ملتی ہے. اور یہ سب کچھ کس کے باعث ہے؟ اس کے نام پر ایمان لانے سے ہے. اور 13 آیت میں لکھا ہے، پھر وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے جتنوں نے اسے قبول کیا. اور تب हम रूहुल कुद्दस का मस्कन बनते हैं जब हम उस पर ईमान लाते हैं। और रूहुल कुद्दस की मामूरी को हम किस तरह जान सकते हैं? रूहुल कुद्दस की मामूरी आपकी जिंदगी में आप इस तरह जान सकते हैं जब बाइबल मुकद्दस का आप मुतालिया करेंगे, तो बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों की समझ आपको आना शुरू होगी। मत इस बात पर उस गलत तलीम के तरफ ध्यान दें कि आप रूहुल कुद्दस की निशानी ये पाएंगे कि गैर जुबाना बोलने शुरू कर देंगे। बाइबल मुकद्दस में बेशक पहला करंथियों का 14वां बाप में गैर जुबानों की नहमतों के बारे में पालूस उसूल बात करता है, लेकिन वहां पर ये गैर जुबाने यहूदियत के उन वक्त के लोगों के लिए है जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया। और इसके लिए हमें इस सच्चाई को जानने के लिए यसाया 28वां बाप उसकी 11वीं आयत को से देखने की जरूरत है कि खुदा ने कहा कि मैं उस उम्मत से गैर जुबानों में बात करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे रद्द किया। और यहूदी उस वक्त खुदावंद को रद्द करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह इस्तिस्ना 28वां बाप उसकी 49 आयत से फिर आपको इस बात का बयान मिलेगा कि क्यों खुदा गैर कौमों में गैर जुबानों में उस वक्त की कौम से बात करेगा। लेकिन अब इस मौजूदा दौर में बाइबल मुकद्दस ऐसी कोई तालीम नहीं देती कि रूहुल कुद्दस की ममूरी इस बात से याहर होती है कि आप गैर जुबाने बोलेंगे। ऐसी कोई तालीम बाइबल मुकद्दस में मौजूदा ईमानदारों के लिए नहीं है। सो इसके लिए बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस कहती है जो कुछ सुने बड़ी हिकमत और दनाई से सुने, और बाइबल मुकद्दस में से उसका मतालिया करने की जरूरत है। कुछ देर के बाद मैं आपको एक और गहरी सच्चाई आप तक पहुंचाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही मदद का बायस होगी। सो हम बात कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ ईमान के बायस हम तीन हिस्सों में तब्दील होते हैं जिसमें रूह, जान और बदन है। रूह, जान और बदन है। लेकिन इंसानों के नुक्ता नजर से सबसे पहले बात कौन सी आती है? बदन, जान और फिर रूह। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा हमारी रूह की ज्यादा फिक्र करता है क्योंकि बदन खाक है और ये खाक में मिल जाएगा। वो रूह को बचाने के लिए चाहता है, उसने अपने बेटे को भेजा है ताकि रूह की रफाकत उसके साथ हो। और पहले करंथियों उसके 5 बाब तकरीबन पहला और दूसरा करंथियों 5 बाब में हमें नया बदन जब आसमान पर जाएंगे मिलेगा, और रूह को वो महफूज करना चाहता है। और मत्ती तकरीबन 10 बाब में कहा गया है कि रूह के लिए फिक्र ना करो, अगर कोई तुम्हारे बदन को कत्ल करे तो उसकी कोई फिक्र नहीं। जरूरत है इस बात पर गौर करने की कि रूह खुदावन का इकरार करे ताकि खुदा जिसने रूह को पैदा किया है आपकी जिंदगी में वो आपकी हिफाजत करे। सो हम बात कर रहे थे कि ईमान के बायस हम नई इंसानियत में तब्दील होते हैं। मेरे साथ एक हवाला निकालें, कुलसियों 3 बाप। यहां पर पालूस उसूल बयान करता है कि हम खुदा से पैदा हुए हैं। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम यीशु मसीह में नए इंसान, यानी कि 2 हिस्सों में से हम 3 हिस्सों में तब्दील होते हैं। मेरे साथ देखें 9वीं आयत में क्या लिखा है, कुलसियों 3 बाप उसकी 9वीं आयत। एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर नई बनती जाती है। याद है आदम खालक के खुदा की सूरत पर पैदा किया गया। यहां पर भी पुरानी इंसानियत से जब हम जुदा होते हैं, यीशु मसीह में पैदा नए तौर पर जब होते हैं तो क्या होता है, हम उस खाल के खुदा की सूरत पर दोबारा नए बनते जाते हैं, जिसके लिए लिखा है और नई इंसानियत को पहन लो। نئی انسانیت کو پہن لو، لباس پہننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح جس طرح لباس پہننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے منہ سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، تب آپ اس نئی انسانیت میں جو معرفت حاصل کریں گے وہ یہ ہے، اپنے خالق کی صورت پر آپ کی حالت نئی بن جائے گی، آپ ان تین حصوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ سادہ سا طریقہ ہے کہ کب ایماندار بچہ، بچی، بیٹا، بزرگ، نوجوان خدا کا مسکن بنتا ہے۔ اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو۔ مسلسل طور پر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، مسلسل طور پر روح کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم روح القدس میں کیا ہیں، کیوں روح القدس کی قدرت ہمارے ان خاکی بدنوں میں سکونت کرتی ہے۔ اس کے پیچھے جو فرشتگان کی جنگ ہے، جو فرشتگان کی کشمکش ہے، یہ بہت ہی گہرا بھید ہے جس پر آپ نے پہلے کبھی نہیں سیکھا ہوگا۔ میں دعا کر رہا ہوں اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہم ضرور اس پر سیکھنا شروع کریں گے۔ ایک حوالہ اور میرے ساتھ نکالیں، تیتس کا خط، اس کا تین باب، اس کی پانچویں آیت، کب ایماندار عورت، بیٹا، بیٹی خدا کا مسکن بنتا ہے۔ کسی کام کے باعث نہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جس طرح لباس پہننے کی ضرورت ہے تاکہ نئے بنے، اسی طرح ایمان میں ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ ایمان کے باعث ہے۔ پانچویں آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا، تیتس پانچواں باب، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کا غسل اور روح القدس کے نئے بنانے کے وسیلہ سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا۔ یہاں پر آپ پر یہ آپ کا سوال بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کب ہم روح القدس کو قبول کرتے ہیں، کب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اس کے لیے کوئی نشان نہیں دیا گیا، ایسا ہی نشان پرانے عہد نامہ میں ہمیں کس کی نظر زندگی میں نظر آتا ہے، ایلیا نبی، وہ آگ میں، پہاڑوں کی گرج میں، بہت سی آوازوں میں خدا کو ڈھونڈتا رہا، لیکن خدا کی آواز اس وقت بہت ہی دھیمی تھی، نہ وہ آندھی میں تھا، نہ وہ بارش میں تھا، نہ وہ کسی اور گرج میں تھا، وہ بڑی دھیمی آواز سے اس سے کلام کرتا ہے۔ روح القدس بھی آپ کی زندگی میں اسی طرح غیبانہ طور پر آپ کے اندر آتا ہے، لیکن جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ کی تعمیر ہونا شروع ہوتی ہے، ترقی یا بڑھوتی مسیح میں شروع ہوتی ہے، تب آپ اس بھید کو جانتے ہیں، اور نجات صرف اور صرف خدا کے فضل اور رحمت کے باعث ہے، کیونکہ اس نے ہم کو نجات دی ہماری راست بازی کے کاموں کے باعث نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش۔ تین حصوں میں وہی اپنے فضل کے باعث ہمیں تبدیل کرتا ہے، وہی ہمیں اپنے فضل کے باعث یہ سچائی بخشتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ختم کریں، میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جلدی سے میرے ساتھ نکالیں، متی کی انجیل، اس کا پانچواں، چوتھا باب، اس کی پانچویں آیت۔ یہاں پر ابلیس کے جھوٹ کا موازنہ کریں گے کہ کس طرح، بے شک آپ نے اس پر بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن جس طریقے سے، جس سچائی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گی۔ نکالیں متی چار باب، اس کی پانچویں آیت، یہاں پر کیا لکھا ہے، تب ابلیس نے اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا کہ किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि यहां पर अबलीस खुदावंद यीशु मसीह को आजमा रहा है और कहा कि अगर तू यानी कि यकीनन यूनानी में से कहा गया है यकीनन मैं जानता हूं तू खुदा का बेटा है अपने तई नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे ऐसा ना हो कि तेरे पांव को ठेस लगे। मेरे साथ पुराने नामों में चले जबूर नवीस में जबूर 91 उसकी 11वीं और 12वीं आयत को देखें अबलीस के इस झूठ को जिसमें बहुत से लोग आज गुमराह है क्योंकि अबलीस झूठ का बाप है और वो बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को किस तरह शातर तरीके से बदलता है। लेकिन आज के मौजूदा ईमानदारों के पास वक्त नहीं है कि बाइबल मुकद्दस को सही नुक्ता नजर से देखें ताकि उन सच्चाइयों को जाने और उन सच्चाइयों के बायस जिंदगी बसर करें। जबूर 91 उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हफाजत करें वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यहां पर जो मुकम्मल हवाला यह है कि खुदा कहता है कि मैं अपने बंदों की रहनुमाई करूंगा उनकी सब राहों में उनकी हिफाजत करूंगा लेकिन अबलीस मत्ती 4:4 में उसकी 6 आयत में सारे हवाला को तब्दील कर देता है और वो इस हिस्सा को उसमें से चुरा लेता है और कहता है कि तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। लेकिन जबूर 91:11 आयत में लिखा है तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेगा। देखें किस चलाकी के साथ वो खुदा के कलाम को बदलता है और झूठ बनाता है ताकि वो ईमानदारों को बेवकूफ बनाए। लेकिन हमारा यीशु मसीह खुदावंद बाइबल मुकद्दस को जो कि मुकम्मल खुदा है जानता है क्योंकि ये उसकी सांस है उसका बोला हुआ कलाम है लेकिन वो अपनी इंसानी जिंदगी में जिंदगी बसर करते हुए मुतालिया करता है। लेकिन आज बहुत से मसीही लोग इस बात से शर्मते हैं और ये बोझ और दर्द और मुसीबत समझते हैं मुतालिया करना। यीशु मसीह अपनी जिंदगी में मतालिया करता रहा और यीशु मसीह ने वो सारी तालीम पाई जो उसे पाना जरूर थी और उसने शरीयत की सारी सारी तालीम को पाया क्योंकि यीशु मसीह इंसानी जिस्म में है और वो इंसानी जिस्म में खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा है। और इसके लिए वाजिया हवाला लूका की इंजील उसका 2:2 उसकी 52 आयत में मिलता है और लिखा है यीशु हिकमत कद्दो कामद में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। किस तरह मुतालिया करने से हर रोज यीशु मसीह की जिंदगी का जो बुनियादी हिस्सा था खुदा बाप की मर्जी को जानना बेशक वो मुकम्मल खुदा था लेकिन इंसानी जिस्म में वो खुदा की मर्जी का तालब रहा। हम किस तरह खुदा की मर्जी के तालब हो सकते हैं बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने से। आपसे दरख्वास्त है अपने आप को सुस्त ना बनाएं। अगर अबलीस हमारा मुखालफ जो यीशु मसीह के साथ झूठ बोल सकता है हवाला को जो मुकम्मल हवाला है उसे सही तरीके से बयान नहीं कर रहा तो आपके साथ वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अपने तकब्बर अपने फखर में कि मैंने 4 जमातें पढ़ ली हैं मेरे पास बहुत सी डिग्रियां हैं या बहुत सी किताबें मैंने इंग्लिश यूनानी इब्रानी में रखी हुई हैं ये किसी काम की नहीं जब तक आपकी जिंदगी में यीशु मसीह की तरह खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने का तलाक नहीं है। और यही बुनियादी बात यीशु मसीह ईमानदारों की जिंदगी में चाहता है कि हर रोज अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। आए हम खुदावन के हुजूर झुकें। आसमानी बाप, आज की सच्चाई के लिए तेरा शुक्र, और हमारे मुखालफ के जलते हुए तीरों और सारे झूठों को समझने की हिकमत और दनाई के लिए तूने अपनी हिकमत और दनाई हमें बाइबल मुकद्दस में दी है। सो खुदा, मुमकिन कर कि हर एक तेरे कलाम से मोहब्बत करना शुरू करे, क्योंकि तेरा कलाम कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। यीशु मसीह के नाम में सबको बड़ी बरकत दे और सबकी रहनुमाई कर, और खुदा उन खुदा खासकर खाकसार बनकर आज के इस कड़वे कलाम को कबूल करने की हिकमत और दनाई दे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन।